ओम शांति। रामायण के अंदर श्री राम और रावण का युद्ध दिखाया गया है, जिसमें अगर उसका सार देखते तो यही है कि रावण जो थे वो प्रतीक थे एक बुराई का, और रावण का जो वध किया वो श्री राम ने किया। रामायण महाकाव्य के रूप में भारतवर्ष के अंदर विशेषकर जाना जाता है, और इस रामायण की जो कहानी है वो बच्चे बच्चे के जहन में बैठी हुई है, क्योंकि टीवी सीरियल के माध्यम से बहुत आसानी से ये हर इंसान की पहुंच में आ गया। उससे पूर्व कुछ लोग ही घरों में रामायण को पढ़ते थे, निरंतर पाठ होता था, लेकिन आज भारतवर्ष में घर घर में रामायण को जानते हैं, पढ़ते हैं। रामायण के जो लिखने वाले हैं, आप विचार कीजिए, वे भी कुछ समय पूर्व होकर के गए हैं। उनके समय पर रामायण की घटना घटी नहीं थी, उन्होंने पूर्व घटना को, पूर्व में जो घटना घटित हो चुकी थी उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसको उन्होंने लिखा और एक पुस्तक के रूप में, काव्य के रूप में हमारे समक्ष रखा। आज विचारणीय बात है कि रावण क्या है। रावण और राम ये दोनों ही आध्यात्मिक शक्तियों और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच में एक युद्ध की स्थिति है। राम एक आध्यात्मिक शक्ति है और रावण एक बुराई का प्रतीक है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है कि किस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त की जाती है। रावण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रावण कहते हैं जो रुलाने वाला है, जो दुख देने वाला है। तो वास्तव में घटना तो घटित हुई है, लेकिन एज इट इज रावण जैसा कोई एक व्यक्ति नहीं था, और जैसा कि राम को दिखाया है ऐसा जो शरीरधारी राम हुए हैं, लेकिन रावण के साथ जिनका युद्ध हुआ है वो शरीरधारी राम नहीं थे। इस बात के लिए आपको हमारा जो कोर्स हम करा रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से समझें। वास्तव में जो राम है, राम परमात्मा का प्रतीक है। राम, अगर रामायण में आप देखते हैं तो रामायण के अंदर राम निराकार को कहा जाता है। रामायण के अंदर चार राम दिखाए हैं, एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। ये रामायण की चौपाई में आपको बता रहा हूं। फिर आगे उसी में कह दिया, वही राम घट घट में डोले, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम का सकल पसारा, वही राम इस जग से न्यारा। तो वहां पर आकर के उसको एक कर दिया। तो वास्तव में चार राम का प्रतीक क्या है? एक राम घट घट माना, आत्मा को राम कहा गया। दूसरा राम कहा गया इस प्रकृति को राम कहा गया, और तीसरा राम एक देवता राम भी हुए हैं त्रेता युग में। एक्चुअल में देवता राम हुए हैं, राजकुमार दशरथ के पुत्र, और एक राम इस जग से न्यारा यानी परमात्मा राम। अब हमें उस परमात्मा राम के बारे में थोड़ा जानना है। रामायण के अंदर ही एक चौपाई आती है जिसमें कहा गया है, सच्चिदानंदमय देह तिहारी विगत विकार जान अधिकारी। यानी आपकी जो देह है वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और जो विकार रहित है वो व्यक्ति उसको पहचान सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नह तह मोह निशा लवलेशा। यानी राम सच्चिदानंद दिनेशा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और दिनेश माना प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और उसके प्रेजेंस से कहीं पर भी निशा माना अंधेरे का, अज्ञान का, जहां पर नामो निशान नहीं रहता। फिर कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। यानी जब राम राज्य होता है, राम जिस वक्त प्रेजेंट होते हैं उस वक्त किसी भी व्यक्ति को दैहिक माना कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, दैविक माना कोई दैवीय शक्तियां जो होती हैं वहां पर भी कोई कमी नहीं होती, और भौतिक माना कोई स्थूल साधनों की भी कोई कमी नहीं होती, किसी प्रकार का वहां पर दुख नहीं होता। आप सोचिए कि इस प्रकार की बातें रामायण में हैं। तो क्या हुआ कि जब परमात्मा राम इस सृष्टि पर आते हैं, उन्हीं को हम कृष्ण भी कहते हैं। कृष्ण माना आकर्षण मूरत, जो सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करे। गीता के अंदर कृष्ण को भी निराकार ही दिखाया है, इसलिए कहा है मैं निराकार हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मेरा जन्म नहीं होता। तो श्री कृष्ण एक राजकुमार भी हुए हैं, सत्ययुग के पहले प्रिंस राजकुमार श्री कृष्ण थे। अब आप चार युगों को देखें तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्ययुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। त्रेता युग आता है, त्रेता में 14 कला से श्री राम राजकुमार। इसके बाद में द्वापर कलयुग। जब कलयुग का एंड होता है तो गीता में क्या कहा गया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो वास्तव में जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, या हम जिनको शिव कहते हैं, शिव भी निराकार हैं, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप, ज्योति का चिन्ह। तो कलयुग के एंड में परमात्मा का अवतरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधर्म इतना बढ़ जाता है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। पापाचार, अन्याचार, अत्याचार, ये जो बढ़ जाता है, तब अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान सृष्टि पे आता है। वो समय है कलयुग का एंड, यानी ये समय, इस समय वर्तमान में आप देखेंगे रावण भी है। रावण माना रुलाने वाला। रावण वास्तव में ये विकारों का प्रतीक है, पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्त्री के अंदर, और पांच विकार पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर शामिल है। उन दोनों का ही पांच शीश रावण के इधर और पांच शीश रावण के इधर, दूसरी साइड में 10 शीश दिखाया ना, दशानन, आनंद माना मुख, जिसके 10 मुख है। तो ऐसे एक्चुअली किसी के 10 मुख होते नहीं है इंसान के, ये एक अलंकार के रूप में दिखाया है। पांच विकारों को इस प्रकार से 10 अलंकार दोनों के मिला के, स्त्री पुरुष के, तो वो रावण। इसलिए आप देखते हैं कि रावण को हर साल बड़ा बना के दिखाते हैं, हर साल जलाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति होता है उसको जला दिया, उसके बाद में कभी किसी को जलाते हैं, चाहे कितना बुरा इंसान हो, उसकी एफिजी बार बार नहीं जलाते। लेकिन रावण को भारतवर्ष के अंदर हर साल जलाते हैं और बड़ा करके जलाते हैं, हर साल पिछले साल से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कारण कि बुराई बढ़ती जा रही है संसार के अंदर। दशानन इसलिए कहा गया, 10 मुख थे, दशहरा मनाते हैं, 10 को हराना, दशहरा माना 10 को हराना, विजयदशमी माना 10 पर विजय प्राप्त करना, 10 विकारों पर। यानी हम पांच विकार तो हमारे स्थूल दिखते हैं, लेकिन इनके और भी रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके बाद ईर्ष्या, छल, हट, आलस्य, शंका, कुशंका, परचिंतन, ये अनेक बीमारियां हैं, ये विकारों की ही रूप है। तो परमात्मा राम, आज देखो कंस भी है, रावण भी है, जरासंध भी है, दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, शकुनी भी है, सारे जो महाभारत के पात्र हैं आज हैं। रामायण के जो पात्र थे बुरे पात्र, शूर्पणखा हैं, या रावण है, या जो भी हैं, सारे के सारे पात्र आज हैं। तो इसलिए ये समय है रावण का, यानी महाभारत काल, रामायण काल अब चल रहा है। जब कलयुग में ये घटना घटित होती है, परमात्मा आते हैं, जब कलयुग के बाद में ये सब सृष्टि का अंत हो जाता है और सारी आत्माएं लगभग 95% से अधिक आत्माएं एक साथ परम धाम चली जाती हैं, फिर सतयुग की शुरुआत होती है। सतयुग में सत्य होता है, वहां पर 16 कलाएं संपन्न होते हैं, वहां पर दुख का नाम निशान नहीं होता। त्रेता में थोड़ा सा मामूली सा कम होता है, 16 से 14 कलाएं होती हैं, लेकिन वहां भी राम राज्य है, वहां भी दुख का नाम निशान नहीं है। उसके बाद में जब त्रेता का अंत होता है, इसलिए कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, तो 33 करोड़ देवी देवताएं माना सतयुग और त्रेता युग की पॉपुलेशन है ये। त्रेता के बाद में एक छोटी प्रलय होती है, क्योंकि देवता वाम मार्ग में चले गए, माना उल्टे रास्ते पर आ गए, तो वहां पर दुख शुरुआत होती है। और जैसे ही दुख शुरू होता है, तब ये कुछ महान आत्माएं आती हैं और इनके द्वारा शास्त्र लिखे जाते हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र ही नहीं होता, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं, वहां दुख ही नहीं तो जरूरत ही नहीं, भरपूर है। तो जब द्वापर के बाद खाली होते हैं, थोड़ा आत्मा कमजोर होती है, तब शास्त्रों की आवश्यकता। शास्त्र क्या है? ये ज्ञान है कि ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ये गलत कार्य किया तो उसका परिणाम ये हुआ। तो जो कलयुग की घटना है वो द्वापर में स्मृति में आती है कुछ आत्माओं के द्वारा, और वो लिखी जाती है, और इस प्रकार से शास्त्र लिखना शुरू होते हैं द्वापर से। द्वापर के बाद में शास्त्र लिखने के बाद में हम सब पढ़ते आते हैं उनको, और थोड़ा समय बीत जाने के बाद हमको ये लगता है कि ये शायद राम थे उस वक्त, रावण था, ऐसा कोई कल्पना, तो उसका चित्रण किया जाता है। हमको समझाने के लिए कवि क्या करता है, चित्रण करता है। सूक्ष्म रूप वैसे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए चित्रण करता है। रावण को कैसे दिखाएं, 10 बुराइयों को कैसे दिखाएं, तो इसलिए उसका एक चित्रण बना देते हैं, एक चित्र बना देते हैं और वो एक पात्र के रूप में दिखा देते हैं। लेकिन रावण हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है आज, इसलिए राम ने कहा ना कि जो मरता नहीं था रावण, यानी बाण मारते थे गला कट जाता था और फिर वो वापस जिंदा हो जाता था। तो उसी प्रकार से आज हम ज्ञान के बातें शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त तो वो रावण यानी बुराई हमारे गले से, यानी उसका गला कट जाता है, लेकिन जैसे ही हम संसार में आते हैं, काम में आते हैं, फिर वापस वो गला खड़ा हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो इसलिए फिर राम ने उसके अंदर अग्नि बाण मारा, जो विभीषण ने बताया। विभीषण माना बुद्धि को कहा गया है, कि विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अग्नि कुंड है, अमृत का कुंड है, उसको जलाना जरूरी है। तो वास्तव में नाभि माना ये देह अभिमान, बॉडी कॉन्सियसनेस उसका। देखिए आज काम है, काम वासना, उसका सबसे मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी नाभि क्या है, उसका नाभि है शरीर का अभिमान, बॉडी कॉन्सियसनेस। बॉडी को देख करके ही तो काम वासना उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा कि इसको जलाओ, तो अग्नि का बाण मारा, यानी कि देह अभिमान रूपी जो अमृत है, अग्नि कुंड, उसको जलाना। अग्नि परमात्मा की याद को कहा जाता है, अग्नि जो है वो परमात्मा की याद को अग्नि कहा गया है। राम की याद, राम को गहराई से याद करने से वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो परमात्मा भी क्या है, ज्योति क्या है, एक एनर्जी है, एक प्रकाश का दिव्य पुंज है। उसको जैसे ही हम याद करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हमारे अंदर से काम वासना रूपी जो राक्षस है, जो हमारी नाभि में बैठा है, अंदर बैठा हुआ है, वो भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो ये सारी आध्यात्मिक बातें हैं, जितने भी शास्त्र हैं हमारे आध्यात्मिक थे, इनको समझना। इसलिए परमात्मा आते हैं और इस वक्त परमात्मा आए हुए हैं, 80 साल हो चुके हैं उनको आए सृष्टि पर। तो इनको समझना है कैसे क्या कार्य कर रहे हैं, इस दिव्य ज्ञान को समझें। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर के नजदीक कहीं भी जाएं तो ये बातें आपको गुह्यता से समझ में आएंगी। ओम शांति।